कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए और बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सत्य वचन में।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ क्योंकि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस समय को देते हैं और मैं उन श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं और उनका भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, हम पुराने नियम से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और पहले राजाओं की पुस्तक और उसके 10 अध्याय से हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इसके पूर्व हम इस बात को जान लें कि पिछले अध्ययन में हमने कुछ बातों को सीखा था। सुलेमान मंदिर बनवा चुका है और परमेश्वर की महिमा शकीना उसमें प्रवेश कर चुकी है। अब सुलेमान ने अपने अन्य निर्माण परियोजनाएं आरंभ की और हिराम सोर का राजा उसे सामग्री देता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान एक प्रकार से संपूर्ण स्वर्ण सम्राट था। वहाँ घर घर में खुशहाली और शांति व्याप्त थी। ऐसे ही समय में शीबा की रानी उसकी ख्याति सुनकर आती है और उसकी गवाही है कि उसने जो सुना था वह तो आधा ही था, परंतु सुलेमान मोरों और बंदरों के समक्ष समय गंवा रहा था। यह कैसी त्रासदी है। समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में दिए थे और उत्पन्न किए थे, लोग आ रहे थे, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 23 से 24 पद को निकाल लीजिए। पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 23 से 24 पद। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। मेरे मित्रों, इसी समय इसराइल का राज्य अपनी चरम सीमा पर था और अत्यंत घनिष्ठ गवाही उसकी विलक्षण प्रतिभा थी। हमने शीबा की रानी की गवाही में यह देखा था और अब लिखा है कि अनेक अन्य जन भी यरूशलेम आते थे। सुलेमान संसार में परमेश्वर का वास्तव में एक महान गवाह था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, और वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। मित्रों, ध्यान दीजिए कि ये आगंतुक की भेंट हैं जो सुलेमान के लिए लाए जाते थे। वह राज्य तैयार किया जो धन धान्य के लिए माना जाने लगा। आगे चलकर इसी के कारण विभाजित राज्य अन्य राष्ट्रों की लूट का कारण बना क्योंकि वह दुर्बल हो गया था। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 26 पद। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए तो उसके 1400 रथ और 12000 सवार हुए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। मेरे मित्रों, घोड़ों और घुड़सवारों को बढ़ाने के कारण सुलेमान ने वही विकास किया जहां परमेश्वर ने इसराइल को मना किया था। सुलेमान के अस्तबलों के सामने आज के रेसकोर्स ऊंट के मुंह में जीरा के स्वरूप हैं। हम पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 27 से 29 पद में पढ़ते हैं, और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गुलर, और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल चांदी पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। मेरे श्रोताओं, सुलेमान ने राष्ट्र को धन धान्य से भर दिया था। उसने सोना चांदी और मणिकों का बाजार अपने हाथ में कर लिया था, परंतु आज आप किस काम में व्यस्त हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन प्रसारण कर रहे हैं या आप बंदरों को जमा कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन से अधिक मनोरंजन पर ध्यान दे रहे हैं या खर्च कर रहे हैं? सुंदरता के मोरों के बारे में क्या है? सौंदर्यकरण पर प्रभु के काम से अधिक क्या आप कर सकते हैं? सोना चांदी और मणियों के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप धन कमाने में ऐसे व्यस्त हैं कि परमेश्वर के लिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं है? हे मेरे मित्रों, हम संसार में गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। मोर और बंदर के व्यापार में व्यस्त होने के कारण परमेश्वर हम पर दया करे। कैसा व्यर्थ काम है मेरे मित्रों। आज हो सकता है कि आप अपने जीवन में, अपने नौकरी, बाल बच्चे और अपने कार्यों में व्यस्त हैं और परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का समय आप उसे दें, उसके कार्यों के लिए दें और उसकी महिमा करें। यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है। हम देखेंगे अध्याय 11 में सुलेमान का पतन और मृत्यु। धर्मशास्त्र में सुलेमान एक विराट चरित्र है। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसके 48 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। सुलेमान के पास इस संसार में किसी भी मनुष्य से अधिक अवसर थे। वह झूठे धर्मों के निराकरण में चूक गया था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में इसे पढ़ते हैं। आरंभ में यह छोटा सा दाग अनदेखा किया गया, परंतु अब वह कोढ़ की नाई फैल गया था। उसके हरम में 1000 अन्य जाति स्त्रियां थी, जिनके कारण उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया था। अतः परमेश्वर ने सुलेमान के विरुद्ध वैरी खड़े कर दिए और यरोबाम को ऊपर उठाया। परिणाम यह हुआ कि राज्य का विभाजन दो भागों में हो गया। हम देखते हैं सुलेमान का ईश्वर त्याग। पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराय स्त्रियों से, जो मुआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ तक स्त्रियों का संबंध था, सुलेमान अपने पिता दाऊद के नक्शे कदम पर चल रहा था। परंतु दुख की बात तो यह है कि उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों में दाऊद की नकल नहीं की। आपको स्मरण होगा कि सुलेमान राजमहल में बड़ा हुआ था। वह लड़कियों की नाई कोमल था, अपने पिता दाऊद की नाई कठोर जीवन कभी नहीं जिया। सुलेमान ने स्त्रियों का संकलन आरंभ किया। जैसे किसी को पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने में रुचि होती है, वह सब जातियों की स्त्रियां लाने लगा। इन स्त्रियों ने सुलेमान का मन बहका दिया और उसे मूर्ति पूजा में ले गई, और यही नहीं, संपूर्ण देश में मूर्ति पूजा को मान्यता दे दी गई। यहाँ सुलेमान ने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इसराइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। मेरे विचार में धर्म शास्त्र में यही एक स्थान है जहाँ प्रेम वासना में बदला है। सुलेमान का यही एक उद्देश्य था। वह राजमहल में जनाना खाने में पला था, अतः उसमें कठोरता और पौरुष की कमी थी। वयस्क हो जाने पर उसने स्त्रियों का संग्रह करना आरंभ कर दिया। वह स्त्रियों की संगति का अभ्यस्त हो गया था, वह छैला था। आज भी अनेक पुरुष ऐसे ही हैं। परमेश्वर इसका दंड उसे देगा। परमेश्वर को सुलेमान का यह कार्य स्वीकार न हुआ। हम पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय के 9 से 13 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इसराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी, और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। मित्रों ध्यान दीजिए, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। हम परमेश्वर के वचन को निष्पक्ष रूप से देखें। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, देखो परमेश्वर ने सुलेमान का 1000 स्त्रियां रखने की अनुमति दी थी। वृतांत इतिहास है और सही संख्या व्यक्त करता है, परंतु इसके प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को भी तो देख लीजिए। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। परमेश्वर ने कहा कि वह उसके हाथ से संपूर्ण राज्य तो नहीं छीनेगा, परंतु एक गोत्र उसके साथ रखेगा। मेरे विचार में वह गोत्र था विन्यामिन। सुलेमान यहूदा गोत्र से था। इस प्रकार विभाजन में विन्यामिन और यहूदा दाऊद के कुल के साथ रहेंगे, शेष 10 गोत्र यरोबाम के साथ अलग हो जाएंगे। मित्रों हम आगे देखते हैं सुलेमान की ताड़ना। यह सुलेमान के राज्य का अंत समय है। परमेश्वर उसके लिए समस्याओं को आने देता है। यशाया में लिखा हुआ है 57 अध्याय उसके 21 पद में, दुष्टों को शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। सुलेमान ने अब तक शांति का आनंद लिया था, परंतु अब पहली बार उसके राज में युद्ध होगा। हम पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, सो यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। मित्रों अब यरोबाम से हमारा परिचय होगा। हम पढ़ेंगे पहले राजाओं के पुस्तक 11 अध्याय उसके 26 से 28 पद में, फिर नाबात का और सरुआह नाम एक विधवा का पुत्र यरोबाम नाम एक एप्रेमी सरेदा वासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिलो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर दरार बंद कर रहा था। यरोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि वह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। यद्यपि यरोबाम एक कर्मचारी का पुत्र था, सुलेमान ने उसकी योग्यता और प्रतिभा को देखा और उसे लोक निर्माण विभाग का सर्वोच्च अधिकारी ठहराया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 29 से 32 पद में पढ़ते हैं, उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अलियाह नबी नई चदर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे, और अय्या ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। मेरे मित्रों भविष्यद्वक्ता अहिय्याह यरोबाम से मैदान में मिला और अपनी चद्दर उस पर डाल दी और 12 टुकड़ों में से फाड़कर उसे 10 टुकड़े लेने को कहा। इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, अर्थात राज्य का विभाजन हो जाएगा। परमेश्वर इसराइल का विभाजन क्यों करना चाहता था? हम पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 33 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मुआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। भविष्यद्वक्ता आगे कहता है कि दाऊद के कारण परमेश्वर राज्य को सुलेमान के हाथ से नहीं छीनेगा, परंतु उसके पुत्र के समय वह ऐसा करेगा। 10 गोत्र यरोबाम को दिए जाएंगे, इसलिए सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, तो वह मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया। मित्रों आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहले राजाओं के पुस्तक 11 अध्याय उसके 40 पद में लिखा हुआ है, और सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की मृत्यु, पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 41 से 43 पद में हम पढ़ते हैं। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इसराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान के कामों और बुद्धि के बारे में हम पहला और दूसरा इतिहास में और अधिक इसके बारे में पढ़ेंगे। वह बड़ा रंगीला शासक था। उसने संसार की विशाल संपदा एकत्र कर ली थी। राज्य की एक एक वस्तु से धन धान्य समृद्धि और भरपूरी छलकती थी। नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सुलेमान के वैभव को संदर्भित किया है। निसंदेह उसके राज्य में लौकिक महिमा व्याप्त थी। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 12 में देखेंगे राज्य का विभाजन, रहुबियाम और यारोबाम। अध्याय 12 में सुलेमान का पुत्र रहुबियाम सुलेमान की गद्दी पर बैठा और उधर हम देखते हैं कि यारोबाम मिस्र से लौटता है और इसराइल के 10 गोत्रों को लेकर रहुबियाम के पास गया। उन्होंने रहुबियाम से कर में कटौती की मांग की। रहुबियाम ने अपने पिता के वृद्ध परामर्शदाताओं का परामर्श अनदेखा करके युवाओं के प्रभाव में उत्तरी क्षेत्र के इन 10 गोत्रों की मांग ठुकरा दी। कर में कटौती करने की अपेक्षा उसने कर बढ़ा दी और धमकी दी। परिणाम स्वरूप यारोबाम ने उन 10 गोत्रों को लेकर विद्रोह कर दिया और तब यारोबाम ने राष्ट्र का राजनीतिक ही नहीं धार्मिक विभाजन भी कर दिया। मेरे मित्रों, उसने बेतेल में और दान में एक सोने का बछड़ा स्थापित कर दिया। इस प्रकार उत्तरी गोत्रों ने मूर्ति पूजा करना आरंभ कर दी। रहुबियाम का राज्याभिषेक और मूर्खता। हम आगे देखते हैं सुलेमान के मरणोपरांत उसका पुत्र रहुबियाम सिंहासन पर बैठता है। तो आइए हम पढ़े पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 से 5 पद। लिखा हुआ है, रहुबियाम तो शकेम को गया क्योंकि सब इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और जब नाबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, सो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यारोबाम और इसराइल की समस्त सभा रहुबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। मेरे मित्रों, सुलेमान की निर्माण परियोजनाओं के कारण प्रजा कर से दबी हुई थी। अतः उसकी मृत्यु के बाद प्रजा ने कर से कटौती की याचना की। सरकार की परियोजनाओं के लिए वित्त की आवश्यकता होती है जो कर द्वारा उपार्जित किया जाता है। कर प्रजा की एक बड़ी समस्या है। मेरे मित्रों, अधिक विकास, अधिक कार्य, अधिक कर्मी, अधिक व्यय, अधिक कर, यही स्थिति सुलेमान के समय इसराइल की थी। वह निर्माण कार्य बढ़ा रहा था जिसके लिए कर द्वारा खर्चा को पूरा किया जा रहा था। तब प्रजा ने रहुबियाम से याचना की कि कर में कटौती की जाए। इस युवा शासक के पास अवसर था कि वह कर में कटौती करके प्रजा का मन जीत ले, पर वह ऐसा करता तो प्रजा उसकी अनुयायी हो जाती। क्या आज कोई नेता है जो सरकारी कर्मचारियों की कटौती करके सरकारी खर्चा कम करे कि करों में कटौती की जाए? रहुबियाम ने अपने बुद्धिमान मूर्खों की सभा बुलाई। तब हम देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, तब राजा रहुबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। आरंभ में तो रहुबियाम ने अपने पिता के परामर्शदाताओं की राय खोजी, परंतु उसे ठुकरा दिया। उनके सुझाव लाभकारी थे, लेकिन उसने नहीं माना। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 से 11 पद में। रहुबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा कि मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने मुझसे कहा कि जो जुआ मेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना कि मेरी छिंगुलिया मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं वृक्षों से दूंगा। अब उसने अपने समकालीनों की राय खोजी और उन्होंने सुझाव तो दिए, परंतु यह सुझाव मूर्खतापूर्ण था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 12 से 15 पद में आगे पढ़ते हैं। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहुबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों को दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको वृक्षों से ताड़ना दूंगा। सो राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। मेरे मित्रों, रहुबियाम ने वृद्धों की राय मानने की अपेक्षा युवकों की राय सुनी। उसने कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी करूंगा। हम आगे देखते हैं, यरोबाम इसराइल का राजा बनता है और राज्य का विभाजन। पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब सब इसराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो ईशे के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इसराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं विद्रोह, गृह युद्ध और अनंत राज्य का विभाजन। लिखा हुआ है पहला राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 18 पद में, तब राजा रहुबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इसराइलों ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रहुबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। उत्तरी राज इसराइल के निवासियों ने अदोराम को पत्थरवाह किया और वह मर गया। इस प्रकार उन्होंने कर्द अधिकारी से मुक्ति पाई। जब रहुबियाम ने सुना कि उसके साथ क्या हुआ है, तब वह भी यरूशलेम को भाग गया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, और इसराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। मेरे मित्रों, पहले राजाओं की पुस्तक के लिखे जाने के समय तक इसराइल दाऊद के घराने से विरोध करता रहा। यह विद्रोह बेबीलोन के दासत्व से लौटने तक बना रहा। रहुबियाम का मूर्खता भरा निर्णय ही प्रजा की आवाज को अनसुना कर दिया। यरोबाम द्वारा 10 गोत्रों के साथ उत्तरी राज्य की स्थापना हुई। हम आगे देखते हैं यरोबाम की मूर्ति पूजा। पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय 25 से 30 पद में लिखा है, तब यरोबाम एप्रेम की पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकलकर पनवेल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहुबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहुबियाम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के दो बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इसराइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। मित्रों, यरोबाम ने बेतेल और दान में एक एक सोने के बछड़े स्थापित करवा दिए। उसने यह इसलिए किया कि उसकी प्रजा आराधना के लिए यरूशलेम को न जाए, क्योंकि मंदिर वहीं था। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी राज्य में इसराइल का विभाजन हुआ। अब हम विभाजित राज्य का वृतांत पढ़ेंगे और देखेंगे कि पहला और दूसरा राजाओं में जो इतिहास लिखा गया है वह इस प्रकार है कि कुछ इतिहास इसराइल का है, तब कुछ इतिहास यहूदा का है। कहने का अर्थ यह है कि इसराइल आगे पीछे चल रहा है। हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों दोनों राज्यों का इतिहास सामने हमारे आएगा, और यहूदा का राज्य इसराइल से अधिक समय स्थिर रहा। और दासत्व के बाद के भविष्यद्वक्ताओं के अतिरिक्त लगभग सभी भविष्यद्वक्ताओं ने इस युग में भविष्यवाणी की थी। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 12 का अंत यहाँ पर होता है। रहोबियाम दाऊद के वंश में दक्षिणी राज्य का राजा हुआ और उत्तरी राज्य का राजा यरोबाम बना। उसने बेतेल और दान में सोने के बछड़ों की एक एक मूर्तियां लगा दी कि उसकी प्रजा आराधना के लिए यरूशलेम मंदिर में न जाए। शीघ्र ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उत्तरी राज्य के पतन तक अर्थात दासत्व में जाने तक चलता रहेगा। मित्रों, हम देखेंगे कि अंत में दक्षिणी राज्य भी दासत्व में चला जाएगा। यह इसराइल का दुखद समय था जिसमें हमारे लिए अनेक शिक्षाएं हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास घुल सकेंगे आ मसीह के द्वारा तेरे पास घुल सकेंगे।